एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को हृदयों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। विशेषकर मैं अपने श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, उन्हें तो तेरा वचन सुनने के द्वारा बहुत आशीष दे, और मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरा वचन को तेरे सामर्थ के द्वारा उन्हें बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करे, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है लाभ जो हानि है। मसीह सिखा रहे थे और हमेशा की तरह उनके शिष्यों के अलावा अन्य लोग भी उनके आसपास इकट्ठे हुए थे। वह अपने शिष्यों से उन दृश्यों के बारे बात कर रहे थे जिनमें उन्हें जल्द ही भूमिका निभानी थी। उन्हें उन सत्यों को प्रकाशित करना था जो मसीह ने उन्हें सौंपे थे, और उन्हें इस दुनिया के शासकों के साथ संघर्ष में लाया जाना था। मसीह की खातिर उन्हें अदालतों में मजिस्ट्रेटों और राजाओं के सामने बुलाया जाएगा। उसने उन्हें ज्ञान का आश्वासन दिया था जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता था। उसके अपने शब्द जिसने भीड़ के दिलों को हिला दिया और उसके चालाक विरोधियों को भ्रमित कर दिया, उस अंदर निवासी आत्मा की शक्ति की गवाही दी जिसका वादा उसने अपने अनुयायियों से किया था। लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जो स्वर्ग की कृपा को केवल अपने स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चाहते थे। उन्होंने सत्य को स्पष्ट प्रकाश में प्रस्तुत करने में मसीह की अद्भुत शक्ति को पहचाना। उन्होंने शासकों और न्यायाधीशों के सामने बोलने के लिए उनके अनुयायियों को बुद्धि के वादे को सुना। क्या वह अपनी शक्ति को उनके सांसारिक लाभ के लिए उधार नहीं देगा? और भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे स्वामी, मेरे भाई से कहो कि वह मेरे साथ विरासत का बंटवारा कर ले। मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने संपत्ति के हस्तांतरण के बारे में निर्देश दिए थे। सबसे बड़े बेटे को पिता की संपत्ति का दोगुना हिस्सा मिलता, व्यवस्था विवरण 21:17, जबकि छोटे भाइयों को समान रूप से हिस्सा देना था। यह आदमी सोचता है कि उसके भाई ने उसकी विरासत को ठगा है। वह जो अपना हक समझता है उसे पाने के लिए उसके अपने प्रयास विफल रहे हैं, लेकिन अगर मसीह बीच में आएगा तो उसका लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। उसने मसीह की प्रेरक अपीलें सुनी हैं और शास्त्रियों और फरीसियों की उसकी गंभीर निंदा सुनी है। अगर इस भाई से इस तरह के आदेश के शब्द कहे जा सकते तो वह पीड़ित व्यक्ति को उसका हिस्सा देने से इनकार करने की हिम्मत नहीं करता। मसीह द्वारा दिए गए गंभीर निर्देशों के बीच इस व्यक्ति ने अपने स्वार्थी स्वभाव को प्रकट किया था। वह प्रभु की उस क्षमता की सराहना कर सकता था जो उसके अपने सांसारिक मामलों की उन्नति के लिए काम कर सकती थी, लेकिन आध्यात्मिक सत्य उसके मन और हृदय पर हावी नहीं हुए थे। विरासत प्राप्त करना उसका आकर्षक विषय था। महिमा के राजा यीशु जो धनी थे फिर भी हमारे लिए गरीब बन गए। उनके लिए ईश्वरीय प्रेम के खजाने खोल रहे थे। पवित्र आत्मा उनसे विनती कर रहा था कि वे उस विरासत के वारिस बने जो अशुद्ध और निष्कलंक है और जो कभी मिटती नहीं। 1 पत्रस 1:4। उसने मसीह की शक्ति का प्रमाण देखा था। अब उसके पास महान शिक्षक से बात करने, अपने दिल में सबसे ऊपर की इच्छा को व्यक्त करने का अवसर था। लेकिन बनियन के रूपक में गंदगी के ढेर वाले व्यक्ति की तरह उसकी आंखें धरती पर टिकी थी। उसने अपने सिर के ऊपर मुकुट नहीं देखा। समान मैगस की तरह उसने ईश्वर के उपहार का महत्व सांसारिक लाभ के साधन के रूप में दिया। पृथ्वी पर उद्धारकर्ता का मिशन तेजी से समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। वह जो करने के लिए आया था उसे पूरा करने के लिए बस कुछ ही महीने बचे थे, अर्थात परमेश्वर की कृपा के राज्य की स्थापना करना। फिर भी मानवीय लालच ने उन्हें अपने काम से हटाकर जमीन के एक टुकड़े पर विवाद करने के लिए विवश कर दिया, लेकिन यीशु को अपने मिशन से विचलित नहीं होना था। उनका जवाब था, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या विभाजक नियुक्त किया है? यीशु इस व्यक्ति को बता सकते थे कि क्या सही है। वह मामले में सही जानता था, लेकिन भाई आपस में झगड़ रहे थे क्योंकि दोनों लालची थे। मसीह ने वस्तुत कहा, इस तरह के विवादों को सुलझाना मेरा काम नहीं है। वह दूसरे उद्देश्य से आया था, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए और इस प्रकार लोगों को शाश्वत वास्तविकताओं की भावना के लिए जगाने के लिए। मसीह ने इस मामले को जिस तरह से संभाला वह उन सभी के लिए एक सबक है जो उसके नाम पर सेवा करते हैं। जब उसने 12 को भेजा तो उसने कहा, चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरे हुओं को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो। मत्ती 10:7-8 में हम यह पाते हैं। उन्हें लोगों के सांसारिक मामलों को निपटाना नहीं था। उनका काम लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए राजी करना था। इस काम में मानवता को आशीर्वाद देने की उनकी शक्ति निहित थी। मनुष्यों के पापों और दुखों का एकमात्र उपाय मसीह है। केवल उसके अनुग्रह का सुसमाचार ही समाज को अभिशाप देने वाली बुराइयों को ठीक कर सकता है। गरीबों के प्रति अमीरों का अन्याय, अमीरों के प्रति गरीबों की घृणा, दोनों की जड़ स्वार्थ में है और इसे केवल मसीह के प्रति समर्पण के माध्यम से ही मिटाया जा सकता है। केवल वही पाप के स्वार्थी हृदय के लिए प्रेम का नया हृदय देता है। मसीह के सेवकों को स्वर्ग से भेजी गई आत्मा के साथ सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए और मनुष्यों के लाभ के लिए जैसा उसने किया वैसा ही काम करना चाहिए। तब मानव जाति के आशीर्वाद और उत्थान में ऐसे परिणाम प्रकट होंगे जो मानव शक्ति द्वारा पूर्णतः असंभव हैं। हमारे प्रभु ने इस प्रश्नकर्ता को परेशान करने वाले मामले और इसी प्रकार के सभी विवादों की जड़ पर प्रहार करते हुए कहा, सावधान रहो और लोभ से बचे रहो, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो कुछ उसके पास है उसकी बहुतायत पर निर्भर नहीं है। और उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बहुत उपज हुई और वह अपने मन में सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए जगह नहीं है। उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी कोठरियां गिरा दूंगा और बड़ी बनाऊंगा और वहां अपनी सारी उपज और माल रखूंगा और मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत धन है, बहुत वर्षों से संचित किया हुआ है, चैन से रह, खा पी आनंद मना। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब ये वस्तुएं जो तूने एकत्र की हैं किसकी होंगी? जो अपने लिए धन संचय करता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं, वह भी ऐसा ही है। मूर्ख धनी व्यक्ति के दृष्टांत के द्वारा मसीह ने उन लोगों की मूर्खता को दिखाया जो संसार को ही अपना सब कुछ मानते हैं। इस व्यक्ति को परमेश्वर से सब कुछ मिला था। सूर्य को उसकी भूमि पर चमकने की अनुमति दी गई थी क्योंकि इसकी किरणें धर्मी और अधर्मी दोनों पर पड़ती हैं। स्वर्ग की वर्षा बुरे और अच्छे दोनों पर होती है। प्रभु ने वनस्पति को पनपने दिया था और खेतों में भरपूर उपज पैदा की थी। धनी व्यक्ति उलझन में था कि उसे अपनी उपज का क्या करना चाहिए। उसके खलिहान खचाखच भरे हुए थे और उसके पास अपनी फसल का अधिशेष रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा जिसकी ओर से उसकी सारी दयाएं आई थी। उसने यह नहीं समझा कि परमेश्वर ने उसे अपनी वस्तुओं का भंडारी बनाया था ताकि वह जरूरतमंदों की मदद कर सके। उसके पास परमेश्वर का दानदाता होने का एक धन्य अवसर था, लेकिन उसने केवल अपने आराम के बारे में सोचा। गरीब, अनाथ, विधवा, पीड़ित लोगों की स्थिति इस अमीर आदमी के ध्यान में नहीं लाई गई थी। ऐसे कई स्थान थे जहां वह अपनी संपत्ति दान कर सकता था। वह आसानी से अपनी बहुतायत का एक हिस्सा खुद को राहत दे सकता था और कई घरों को अभाव से मुक्त किया जा सकता था। कई भूखे लोगों को भोजन कराया जा सकता था। कई नंगे लोगों को कपड़े पहनाए जा सकते थे। कई दिलों को खुशी दी जा सकती थी। रोटी और कपड़ों के लिए कई प्रार्थनाएं सुनी जा सकती थी और प्रशंसा की धुन स्वर्ग तक पहुंच सकती थी। प्रभु ने जरूरतमंदों की प्रार्थनाएं सुनी थी और अपनी भलाई से उसने गरीबों के लिए तैयारी की थी। भजन संहिता 68:10। अमीर आदमी को दिए गए आशीर्वाद में कई लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर प्रावधान किया गया था, लेकिन उसने जरूरतमंदों की पुकार के लिए अपना दिल बंद कर लिया और अपने सेवकों से कहा, मैं यह करूंगा, मैं उन्हें खींच लूंगा, मैं अपने खलियानों को गिराकर और भी बड़े खलियान बनाऊंगा और वहां मैं अपने सारे फल और अपनी सारी संपत्ति रखूंगा और मैं अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन से रह, खा पी और आनंद मना। इस आदमी के लक्ष्य मरने वाले जानवरों से ज्यादा नहीं थे। वह ऐसे जीता था जैसे ना कोई ईश्वर है, ना कोई स्वर्ग, कोई भावी जीवन नहीं। मानो उसके पास जो कुछ भी था वह उसका अपना था और वह ईश्वर या मनुष्य का कुछ भी ऋणी नहीं था। भजनकार ने इस धनी व्यक्ति का वर्णन करते हुए लिखा, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई ईश्वर नहीं है। भजन 14:1 कहता है, इस व्यक्ति ने अपने लिए जीवन जिया है और योजना बनाई है। वह देखता है कि भविष्य के लिए भरपूर प्रबंध किया गया है। अब उसके पास अपने परिश्रम के फल को संजोने और उसका आनंद लेने के अलावा और कुछ नहीं है। वह खुद को अन्य लोगों से अधिक अनुग्रहित मानता है और अपने बुद्धिमान प्रबंधन का श्रेय खुद को देता है। वह अपने साथी नगरवासियों द्वारा एक अच्छे निर्णय लेने वाले व्यक्ति और एक समृद्ध नागरिक के रूप में सम्मानित किया जाता है, क्योंकि जब तू अपना भला करेगा तब लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। भजन संहिता 49:18। लेकिन इस संसार की बुद्धि परमेश्वर के निकट मूर्खता है, कहता है 1 कुरिन्थियों 3:19। जबकि धनी व्यक्ति वर्षों तक आनंद की आशा कर रहा है, प्रभु बहुत अलग योजनाएं बना रहा है। संदेश इस विश्वासघाती प्रबंधक के पास आता है, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। यह एक ऐसी मांग है जिसे पैसे से पूरा नहीं किया जा सकता। उसने जो धन संचित किया है उसे कोई राहत नहीं मिल सकती। एक पल में वह सब कुछ जो उसने अपने पूरे जीवन में सुरक्षित करने के लिए मेहनत की है उसके लिए बेकार हो जाता है। तो फिर जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? उसके विस्तृत खेत और भरे हुए अन्न भंडार उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। वह धन इकट्ठा करता है और नहीं जानता है कि उसे कौन इकट्ठा करेगा। भजन संहिता 39:6 कहता है, एकमात्र चीज जो अब उसके लिए मूल्यवान हो सकती थी उसे उसने हासिल नहीं किया। अपने लिए जीने में उसने उस दिव्य प्रेम को अस्वीकार कर दिया है जो उसके साथियों के लिए दया में बहता था। इस प्रकार उसने जीवन को अस्वीकार कर लिया है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम ही जीवन है। इस व्यक्ति ने आध्यात्मिक के बजाय संसारिक को चुना है और संसारिक के साथ उसे मरना होगा। जो मनुष्य सम्मान में है और समझ नहीं रखता वह नाश होने वाले पशुओं के समान है, कहता है भजन संहिता 49:20। ऐसा ही वह व्यक्ति है जो अपने लिए धन इकट्ठा करता है परंतु परमेश्वर के प्रति धनी नहीं है। यह तस्वीर हर समय के लिए सच है। आप सिर्फ स्वार्थी भलाई के लिए योजना बना सकते हैं, आप खजाना इकट्ठा कर सकते हैं, आप बड़े और ऊंचे महल बना सकते हैं जैसा कि प्राचीन बेबीलोन के निर्माताओं ने किया था, लेकिन आप इतनी ऊंची दीवार या इतना मजबूत दरवाजा नहीं बना सकते कि विनाश के दूतों को बाहर रखा जा सके। बेलशाजर राजा ने अपने महल में दावत की और सोने चांदी पीतल लोहे लकड़ी और पत्थर के देवताओं की स्तुति की, लेकिन एक अदृश्य के हाथ ने उसकी दीवारों पर विनाश के शब्द लिखे और उसके महल के द्वारों पर शत्रुतापूर्ण सेनाओं के चलने की आवाज सुनी गई। उसी रात कसदियों का राजा बेलशाजर मारा गया और एक विदेशी राजा सिंहासन पर बैठा। हम यह कहानी पढ़ते हैं दानियल 5:30 में। अपने लिए जीना नाश होना है, लालच स्वार्थ के लिए लाभ की इच्छा आत्मा को जीवन से अलग कर देती है। पाना अपने पास खींचना शैतान की आत्मा है। दूसरों की भलाई के लिए देना, खुद को बलिदान करना मसीह की आत्मा है। और यह प्रमाण है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। यह हम पाते हैं लिखा हुआ है 1 यूहन्ना 5:11-12 पद में। इसलिए वह कहता है, सावधान रहो और लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हाँ प्यारो, यह यीशु मसीह का वचन जो हमें मिलता है उस पर हम ध्यान दें। उसका जो सावधानी बरतने के लिए हमें कहा गया है उस पर हम ध्यान लगाए। हम दूसरों को अपना प्रेम बांटे और जो आशीष परमेश्वर हमें दिया है उसे दूसरों को दया दिखा करके उनका मदद करें जो इतना आशीषित नहीं है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम सबों को तो आशीष दे। इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें प्रेम से भर दे और हमें तेरा दया दिखाने के लिए मदद कर कि जो आशीष तूने हमें दिया है पिता हम दूसरों से बांटे और उन पर दया करें जो उतना आशीषित नहीं है। हम सबों को तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे पिता, हमारे पापों को क्षमा कर और तेरे राह में चल। हम सबों को तेरे राज के लिए तैयार कर पिता। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करे, आमीन।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।